सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन
वाणी स्वामी जी महाराज की चेतावनी भाग दूसरा। मिली नर देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना।
अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो मनुष्य जन्म है। ये तो सत्संग में कई बार अर्ज किया जा चुका है कि इस दुनिया के दो हिस्से हैं, एक जल दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ बड़ी मछलियों को खा जाते हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब थल की ओर आ जाओ, यहां भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खा जाते हैं, गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियां पौधों को खा जाती हैं, बाज चिड़ियों को खा जाते हैं, चिड़ियां कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जेते दाणे अन्न के जियां बाज न कोई। बेशुमार जीव हमसे टकरा कर मर जाते हैं, बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी बीसियों जीव आ जाते हैं। ये वायुमंडल जीवों से ठसा ठस भरा हुआ है। उस मालिक ने जीवों को चार श्रेणियों में बांटा है, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। एक वे जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान वगैरह। एक वे जो मौसम की तब्दीली परिवर्तन से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जूं वगैरह। एक वे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे सभी किस्म के पक्षी। एक वे जो ज़मीन पर उगते हैं, जैसे सब्जी, फूल, घास फूस, बाग बगीचे वगैरह। आग, हवा, यानी हर एक में जीव हैं, आया ख्याल? फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं, कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। इस 84 लाख किस्म की योनियों के जेल खाने से निकलने की राह मनुष्य जन्म है, लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। खुद वाहेगुरु, अकाल पुरुष, ईश्वर, खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, इसके अंदर है। वो ना किताबों, पोथियों और ग्रंथों में है, ना तीर्थों, मूर्तियों, जंगलों और पहाड़ों में। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कहती हैं कि इसके अंदर है, मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता, वो दौलत किस तरह मिले, परमात्मा कैसे मिले, जेल खाने से छुटकारा कैसे हो? छुटकारा उस वक्त होता है जब ये पर्दा खोलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस अकाल पुरख ने क्या खजाने रखे हुए हैं। उस परम पिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाए, तो जेल खाने से निकलने की राह मिलती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। इसी तरह मनुष्य जन्म उत्तम से उत्तम है, देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर ये कदर नहीं करता, बल्कि विषय विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में खो जाता है, अपने आप को नहीं पहचानता, आप घाती सो महापापी। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम बेटे बेटियों मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया तब आंख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे दो घंटे सपना देखते हैं, उस समय हमें वो सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि सब झूठ था। इसी तरह ये दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहोगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे हाय ये तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है, जो कुछ करना है अभी करना है। मगर अफसोस, ये जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। बीमार को अच्छे भोजन दो, वो कहता है कि परे हटाओ। इसी तरह ये दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्यार बाहर खींच लाते हैं। महात्मा क्या करें, वे दवा देते हैं मगर ये खाता नहीं। जिस तरह डॉक्टर से दवा ले आए मगर खाई नहीं तो फायदा कुछ नहीं होता। दवा आले में, बीमार बिस्तर में और गालियां डॉक्टर को वाली मिसाल है। इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी गलतियों को नहीं देखेगा ये कामयाब नहीं होगा।
देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना।
कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं हैं, ये शरीर हमारा नहीं बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सारे ऋषियों मुनियों बुजुर्गों ने यहीं छोड़ दिया और हमें भी यहीं छोड़ना है। मगर जब तक हम इस मकान यानी शरीर में हैं हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं, बाल बच्चे कौम मजहब सब भ्रम हैं। हम अपना कुछ नहीं करते बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप सोचो साथ जाने वाली कौन सी चीज है, क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरी शब्द धुन। हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं फिर संभाले कौन?
जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना।
सारा संसार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत काल भगवान का चबैना है। यही कबीर साहब कहते हैं, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। करोड़ों कौमें आईं और चली गईं, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोगों को मरते हुए देखते हैं मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले तो और हैं। काम क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, ये सोचता नहीं। इसके विपरीत जब आपको किसी सफर पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो, किसी सराय होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का पहले से ही इंतजाम कर लेते हो, किस राह जाना है और किस तरह जाना है इन सारी बातों को पहले ही सोच लेते हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस घर यानी शरीर को छोड़कर आगे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, किस राह जाना है और रास्ते के लिए तोशा यानी सामान क्या ले जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अकल मारी गई है।
तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना।
आशा तृष्णा ने सारे जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा की आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करोड़ों वर्षों का।
नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना।
करोड़ों युग गुजर गए, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो गईं, लेकिन इस जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं, मगर अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहां बैठे ना होते। हां, छुटकारे की राह ढूंढते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ये करोड़ों जन्मों से, बेशुमार युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, हिरन, पक्षी, सर्प, घोड़े, पेड़ आदि बनता आ रहा है और 84 लाख योनियां भोग रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसे चाहिए कि निकलने का कोई उपाय करे और जो खजाना है उसे निकाले। वेद शास्त्र, ग्रंथ पोथियां और अन्य किताबें रब की महिमा करती हैं, मगर रब किताबों में नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। किताबों में उसका जिक्र है। विचार करो, निरंकारी राम रहीम आपके साथ हैं, वरना किताबों से पूछें कि वे कहाँ हैं तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर हैं। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, सब किछ कर्म है बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। एक हिंदू महात्मा पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। और मुसलमान फकीर कहते हैं कि आलम सगीर यानी पिंड आलम कबीर यानी ब्रह्मांड का मॉडल यानी नमूना है। जो जो महात्मा अंदर गए उन सब का एक ही ख्याल है। जब तक पर्दा लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक अंदर नहीं जाते जन्म मरण समाप्त नहीं होता। बात तो सिर्फ इतनी है।
जलेंगे आग में निस दिन, बोहरे भोगे जन्म मरना।
आदमी खोटे पापों और कर्मों से नरकों में जाता और जलता है, फिर नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता बल्कि सांप, घास फूस, पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ, स्वर्गों से उतरकर मनुष्य जन्म जरूर मिलता है। आप एक मिनट के लिए 84 लाख योनियों का हिसाब लगाकर देखो। हमारे वेद शास्त्र, पूर्ण महात्मा, कामिल मुर्शिद कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो कई युगों में पूरी होती है। अगर 10-10 वर्ष की औसत उम्र का अनुमान लगाएं तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। हालांकि ये अनुमान भी ठीक नहीं है। किसी किसी योनि की उम्र बहुत ज़्यादा है। सांपों की उम्र सैकड़ों साल होती है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 2-2, 3-300 वर्ष की बताते हैं। आदमी की उम्र 50 या 60 साल है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठा उठाकर 50 या 60 साल गंदगी की खान भोगी भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में काटने पड़े, क्या कोई मंजूर करता है? ये तो इसी तरह है जैसे किसी को सारा दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए, कोई मंजूर नहीं करता। पर हम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे साथ बीत रही है।
भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना।
अलग अलग खानियों और योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल चक्र से देवी देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि यह चक्र बड़ा भयंकर है। और हम किस गिनती में आते हैं? हम विचार नहीं करते, अगर विचार करें तो रूह कांप उठती है।
कहूं क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना।
अब कहते हैं, इसे जो जो दुख 84 लाख योनियों में होता है उसका बयान नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखो, हजारों गायें रोज कत्ल की जाती हैं। वे चिल्लाती हैं मगर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करें, सुने कौन? लाखों बकरियां ममयाती रहती हैं और उनके गले काट दिए जाते हैं, मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है। किसी समय ये भी मनुष्य थीं, मुमकिन है आप व हमसे भी अच्छी रही हों, सेठ साहूकार या बादशाह रही हों, परंतु कर्मों के चक्र में आकर इस समय मुर्गियां बकरियां बनी हुई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद सुनता है? कोई नहीं। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजबान बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थककर बैठ जाते हैं तो किसान डंडों से मारते हैं। अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आर चुभाकर उठाते हैं, और कोई कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आर से भी नहीं उठते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रस्सी से उनका मुंह बांध देते हैं, जब सांस रुकता है तो उठ जाते हैं। क्या ये सुख है? मैंने पहाड़ों में खुद यानी अपनी आंखों से देखा है कि ऊंट लादे जाते हैं, चढ़ाई का सफर है, गोरे यानी अंग्रेज सारबान से कहते हैं कि जल्दी करो। सारबान ने एक ऊंट को डंडा मारा, जैसे ही उसका पैर फिसला कतार की कतार खड्ड में गिर गई और ऊंट मर गए। इस दुनिया में दुख ही दुख है, परंतु हम विचार नहीं करते, बल्कि कहते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा। ये गफलत है, भूल है। अगर हम विचार करें तो बचने का इंतजाम करें, और यहां फिर आए ही क्यों? शराब कबाब और भोगों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में आप अंदर झांक कर देखो, सुखी कोई नहीं है। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की पुत्र वधु विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई तो किसी को कोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जो नाम जपता है उसी को चैन है। यही सहजो बाई कहती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन हैं दुख रूप, साध सुखी सहजो कह पायो भेद अनूप। जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गया वही सुखी है, उसे ही शांति है। सहजो बाई फिर कहती हैं, ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे सुन समाध। ना आलिम फाजिल सुखी हैं, ना गुणी ज्ञानी सुखी हैं, ना वाद विवाद में सुख है, ना कौमों मजहबों में। मैंने उपदेशकों को देखा है कि वे दूसरे मजहब की सोसाइटियों या मीटिंगों में जाते हैं, वहाँ उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती, वे सुन सुनकर लाल पीले होते हैं, हालांकि दुनिया को शांति का उपदेश देते हैं। अगर शांति है तो नाम में है। दुनिया और दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं, ब्रह्मांड के राज में भी सुख नहीं, अगर है तो आपके अंदर है।
दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना।
वे संत महात्मा कामिल फकीर जो इस जेलखाने से मुक्त हो गए, मालिक से मिल गए, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं, उनका दिल दुखी होता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारा देश सचखंड मकाम हक और तुम्हारी कौम सतनाम है, वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, ना दुख है ना सुख है, ये उस सतनाम के समुद्र की बूंद है, इसलिए ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना कौम या मज़हब छोड़ने की और ना ही कामकाज छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम तैयार हैं। इन कौमों बिरादरियों और रिश्तेदारियों ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, नहीं तो संतों का उपदेश तो इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बूढ़े तक अमल कर सकते हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके लिए साझा है और सबके अंदर है। किसी कौम के होकर अंदर जाओ, नाम सारे संसार के लिए एक ही है, वो ना गुरमुखी है ना संस्कृत है ना अरबी और ना फारसी, वहाँ कोई जबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं, वो अकथ कथा और लाबयान है। मालिक से मिलने का ये मार्ग संपूर्ण संसार के लिए एक ही है। कौम और मज़हब हमारे नहीं बल्कि मन के बनाए हुए डिज़ाइन हैं। सोचो, 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1600 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे और 2-3 हज़ार वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे, और पीछे चलते जाएं तो आखिर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य रह जाएंगे। ये सब झगड़े मन के पैदा किए हुए हैं। मुसलमानों का कुरान शरीफ एक है, मगर मुसलमानों में 72 संप्रदाय हो गए हैं। ये अलग अलग संप्रदाय किसने बनाए हैं? मन ने। गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहब एक है, परंतु 50 संप्रदाय बन गए हैं, शायद आगे और भी बने। हिंदुओं में संप्रदायों की कोई गिनती ही नहीं है, ईसाइयों के भी 20 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, परंतु इंजील एक ही है। इन सब का डिज़ाइनर यानी बनाने वाला मन ही है। अकाल पुरुष एक है, उसकी शिक्षा एक है, मार्ग एक है और वो सबके अंदर है। जब अंदर जाओ, पर्दा खोलो, तब पता लगेगा। वहाँ ना हिंदू को कोई रियायत है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को, ना सिख को, वहाँ किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जात पात पूछे ना कोए, हरि को भजे सो हरि का होए। वहाँ इश्क और प्रेम का सवाल है, मन व इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद होने का सवाल है। लोग यहाँ कौम मज़हब खुदगर्जी ईर्ष्या द्वेष आदि की आग में जल रहे हैं, वहाँ कोई लिहाज नहीं है। किताबें पढ़कर देख लो, जब संत सचखंड से आते हैं वे सबको एक ही उपदेश देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर नाम है, आत्मा को 9 द्वारों से निकाल कर 10वीं गली में ले आओ और सुरत को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ दो। वेद उसे नाद और आकाशवाणी कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने आद सच जुगाद सच और गुरबाणी कहा है। एक ही मार्ग और एक ही उपदेश है, सभी संतों का एक ही मिशन है, वो अजप्पा जाप है और खुद बखुद जपा जा रहा है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो, वो 10वीं गली में खुद बखुद हो रहा है, उसके साथ आपको जुड़ना है।
न माने जुगती यह उनकी, सुरत और शब्द का गहना।
कहते हैं, संतों की शिक्षा आसान से आसान है, कुदरती है, युगों युगों से है, वो सनातन से सनातन है, आदिकाल से है, अटल है, नेचुरल लॉ है, कुदरती कानून है, जब से दुनिया बनी है तब से है। मगर इतनी आसान युक्ति होते हुए भी दुनिया नहीं मानती। मन इंद्रियों के नशे नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उधर नहीं जाने देते। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति न भावई, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन कस्तूरी यानी मुश्क कपूर आदि पर नहीं बैठती बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन भिन करती है, इसी तरह इसका हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल लें मगर ये कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि अंदर यानी ब्रह्मांड में कितनी शांति है। संत बताते हैं पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ सुरत और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसी की तारीफ करते हैं, अन्य किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि वो आपके अंदर है। कुरान शरीफ का कथन है कि खुदा शाहरग यानी सुषमना नाड़ी से नज़दीक है। जब तक शाहरग में नहीं जाते खुदा नहीं मिलता। भगवद गीता कहती है कि वो अंदर है परंतु हम अंदर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि वो बातों से मिल जाए पर वो बातों का विषय नहीं।
बिना सतगुरु बिना करनी छुटे नहीं खान का फिरना।
सभी ऋषियों मुनियों फकीरों का एक ही ख्याल है कि जब तक पूरा गुरु राह न बताए और यह कमाई न करे अंदर पर्दा नहीं खुलता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। सीधा हिसाब है, जब तक जीते जी नहीं मरते काम नहीं बनता। हम अल्लाह परमेश्वर आदि लफ्जों को नाम समझते हैं, लफ्ज नाम नहीं। दुनिया लफ्जों में मर गई। लफ्ज सिर्फ रूह को नाम के साथ जोड़ने के लिए हैं, समझाने बुझाने के लिए हैं। कई बार अर्ज की है कि गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। नाम आंखों का विषय नहीं है, ये आंखें और कान वहां काम नहीं कर सकते, वो आंख और ही है। पैरा बाजों चलना बिन हत्था करना, उस देश में ये शरीर नहीं जाता। जीबे बाजो बोलना एवं जीवत मरना, वहां कोई जबान नहीं, कोई ग्रंथ वेद शास्त्र इंजील नहीं। वो कब मिलता है? जब ये जीते जी मरे यानी यहां तक दोनों आंखों के बीच में आ जाए, नौ दरवाजों को छोड़कर पिंड से निकलकर अंड में आ जाए। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, चाहे किसी भी कौम या मजहब का क्यों ना हो, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं है। नानक हुक्म पछाण के तव खसमे मिलना, वो हुक्म है, अमरे रब्बी है, वो हरेक के अंदर है, वो नाम है। मुसलमान फकीर भी यही कहते हैं, बनामे ऊ केह ऊ नामे नदारद, बहर नामे कह खानी सरबरारद। उसका कोई नाम नहीं, जिस नाम से मर्जी हो बुलाओ वो बोलता है। वो अनामी है, सबका सहायक है, लेकिन तब तक आत्मा नाम की लज्जत नहीं लेती जब तक इस 84 के जेलखाने से नहीं निकलती। जितने भी संत महात्मा नौ दरवाजे खाली करके दसवीं गली में गए और शब्द के मार्ग से खंडों ब्रह्मांडों को पार कर गए, उन सब का एक ही उपदेश और एक ही मार्ग है, चाहे वे हिंदू रहे हों, चाहे मुसलमान या किसी और धर्म या जाति में आए हों। लेकिन जो महात्मा नौ दरवाजों छह चक्रों तथा मन व बुद्धि के दायरे में ही रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब तक सदगुरु ना मिले, ये कमाई ना करे, नौ दरवाजे खाली करके दसवीं गली में ना जाए, रूह नाम से नहीं जुड़ती, चाहे नाम बेशक जपता रहे। लफ्जों के झगड़े तब तक ही हैं, जब नाम के साथ जुड़ जाए फिर कोई झगड़ा नहीं। गुरु मिल गया, नाम के साथ रूह जुड़ गई, फिर आप उसे अल्लाह कहो, रब कहो, परमेश्वर गिरधारी मुरारी कहो, वाहेगुरु कहो, मतलब कि जो कुछ चाहो कह दो, कोई एतराज नहीं। एक डंडा है, चाहे उसको सोटा कह दो, लठ कह दो, बात तो एक ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने परमात्मा के 1200-1400 के करीब नाम रखे हैं जो कि वेदों शास्त्रों में नहीं आए। अगर स्वामी जी महाराज ने उसका एक और नाम राधा स्वामी रख लिया तो शोर मच गया। उन 1400 नामों का ख्याल नहीं, चीज़ इन लफ्ज़ों में नहीं है, वो अंदर है।
कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना।
महात्मा हार हार कर चले जाते हैं। वे चाहते हैं कि सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएं, लेकिन हम भेड़ों के झुंड के समान लौट लौट कर भवसागर में डूबते जाते हैं और दुख सहते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग तरस खाकर भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती और वापस बाड़े में चली जाती हैं। संत बेटे बेटियां जाति बिरादरी नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि भाई तेरे अंदर नाम है, सच है, रोज 2-4 घंटे उसके साथ लिव जोड़। हम उनकी बात को नहीं मानते क्योंकि हमें काम क्रोध आदि भोगों और बाल बच्चों के मोह ने पागल कर रखा है, इसलिए हम महात्मा के वचन नहीं मानते। वे जेलखाने से निकालने के लिए आते हैं, मगर दुनिया उनको ही तकलीफ देती है। श्री गुरु अंगद देव जी के समय में एक बार वर्षा नहीं हुई। जाटों को सयाने लोगों ने कहा कि तुम्हारे गांव में अंगद बैठा हुआ है, वो देवी देवताओं को नहीं मानता, इसलिए वर्षा नहीं होती, उसे गांव से निकाल दो, वर्षा हो जाएगी। जाटों ने गुरु साहब से कहा कि आप अपना डेरा उठा लो। ऐसी ऊंची कमाई वाले महात्मा को भी डेरा उठाकर जाना पड़ा। श्री गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की गद्दी पर बैठे सत्संग कर रहे थे कि गुरु अंगद देव जी का लड़का आया और लात मारकर बोला, तेरी मति मारी गई है, मेरे पिता की गद्दी पर बैठा हुआ है। लोग हैरान हो गए। गुरु अमरदास जी ने कहा, मेरा शरीर बुढ़ा और हड्डियां सख्त हैं, आपके पैर में चोट तो नहीं आई, ये लो अपनी गद्दी ले लो। फिर संगत से फरमाया, कोई ना उठे और आप चल दिए। जब गुरु अमरदास जी चले गए तो लोग भी एक एक करके चले गए और गुरु अंगद देव जी का लड़का अकेला रह गया। जब वो दरिया आदि घोड़ों पर लाद कर अपने घर की ओर चला तो रास्ते में चोरों ने सब कुछ छीन लिया। इसी प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब 12 वर्ष ग्वालियर के किले में कैद रहे। गुरु अर्जन देव जी के सगे भाई ने बादशाह को सिखाकर उन्हें दुख पहुंचाए। दुनिया जानती है कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली में उतारा गया क्योंकि वे मालिक की प्राप्ति के ऊंचे भेद का उपदेश देते थे। वे लोगों को जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हजरत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा, शम्स तबरेज को खाल खिंचवानी पड़ी, किस किस का नाम लो। ये अंग्रेजों के राज की और उसके बाद की मेहरबानी है कि हम आज़ादी से सत्संग करते हैं। अगर पुराने राज जैसा ज़माना होता तो हम आज़ादी से सत्संग भी नहीं कर सकते। महात्मा कह कह कर थक गए, मगर मनुष्य नहीं समझा। जन्म मरण समाप्त नहीं किया, अकाल पुरुष का दर्शन नहीं किया, यहीं का यहीं रह गया।
हुए मनमुख फिरे दुख में, बचन गुर का नहीं माना।
सदगुरु चाहते हैं कि सबको ले चलें। ये दुनिया के दुख सहते हैं, 84 के कष्ट सह लेते हैं, परंतु उस ओर नहीं जाते, यानी हमारे ऐब पाप हमें उस ओर जाने नहीं देते।
पुजावे आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना।
जिस तरह खजाने के ऊपर बैठे सांप के बारे में कहते हैं कि जब तक सांप नहीं मरता खजाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारे अंदर करोड़ों खजाने, बेशुमार दौलत, खंड ब्रह्मांड हैं। खुद खुदा अंदर है, मगर हृदय में मन रूपी सर्प बैठा हुआ है। इसके जहर के नशे में हर एक जीव चाहता है कि गुरु मेरे कहने के अनुसार चले और गुरु मेरे अधीन रहे। ये मन की बेईमानी है। अगर गुरु शिष्य की इच्छा के अनुसार चले तो शिष्य तो करोड़ों वर्षों में भी अंदर नहीं जा सकता। अगर उस्ताद तालिब इल्म यानी विद्यार्थी की मर्जी के अनुसार चले तो तालिब इल्म पढ़ नहीं सकता। जब शिष्य अपनी मर्जी छोड़कर गुरु के आदेश के अनुसार चलेगा तब अंदर जाएगा, परंतु मन उसे अंदर जाने नहीं देता।
फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना।
इस वक्त गफलत के नशे में उसे नफे नुकसान की चिंता नहीं। उसे विश्वास नहीं कि मेरा कभी हिसाब होगा। हालांकि सब धर्म पुस्तकें यही कहती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि एक एक ग्रास का लेखा देना पड़ेगा, परंतु ये कहता है ए जग मिठा अगला किन डिठा, अंधा हो रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं माया तारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रोल कचोला, अपनी करतूतों के कारण नरक भोगता है।
समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना।
कहते हैं कि तुम्हारे फायदे की बात कह दी है, समझ कर विचार कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी।
फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना। समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना।